अगली सूरत सौफात है, आप कह लीजिए सौफात सफ़े बांधने वाले, डिसिप्लिन सिखाने वाली सूरत। फरिश्ते कैसे सफ़े बांधते हैं यहाँ आपको दिखेगा। और सफ़ बंदी की अहमियत देखिए, कुरान पाक में दो सूरतें हैं, सौफात और सफ़। सफ़ क्या होती है? रोज़ बनाना। रो कब बनती है? किस चीज़ की दलील है? डिसिप्लिन की। हक वाला हक अपने वक्त पे ले, ये नहीं कि बाद में आने वाला पहले वो चीज़ लेकर चला जाए और तुम्हें पीछे डाल दे। कायनात इसी असूल पे चल रही है, और वो क्या है? अपने हिस्से का काम करो, लेग पुलिंग ना करो, डिसिप्लिन रहो। आज वेस्ट ने इस असूल को अपनाया, कामयाब है। हम वो लोग जिनको दिन में 5 बार सफ़े बनवाकर नमाज पढ़ाई जाती है, हम उतने ही डिसऑर्गनाइज्ड हैं। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। आइए पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्साफाति सफ्फा, फज्जाजिराति जज्रा, फत्तालियाति ज़िक्रा, इन्ना इलाहकुम लवाहिद। कितार तार कितार सफ बांधने वालों की कसम, फिर इनकी कसम जो डांटते फिटकारने वाले हैं, फिर इनकी कसम जो कलाम नसीहत सुनाने वाले हैं। इतनी कसमों के बाद जवाब सुनिए, इन्ना इलाहकुम लवाहिद, तुम्हारा माबूद हकीकी बस एक ही है। वो जो जमीनों आसमान को और तमाम चीजों का मालिक है, जो जमीनों आसमान में है और सारे मशरिकों का मालिक, तो क्या कहें? वो माली अला अब्दुल्लज़ी फतरनी। कायनात में अल्लाह ताला ने अपने वजूद की दलील में इतना कुछ रख दिया कि हम उसको बिन देखे भी उससे डरे। अपने लिए अमल की बात इसमें यही नोट कीजिए कि मैंने आपने फरिश्तों की तरह अल्लाह के हर हुक्म पे कान रखने हैं। फरिश्तों की सिफात से कुरान पाक भरा हुआ है, अल्लाह ताला हमें उनसे भी नसीहत लेने वाला बनाए। फिर फरमाए, नज़ैय्यन्नस्समा दुनिया बिज़ीनत निल्कवाकिब, हमने आसमाने दुनिया को तारों की जीनत से आरास्ता किया, और हर शैतान सरकश से इनको महफूज कर दिया। ये शैतीन मलय आला की बातें नहीं सुन सकते, हर तरफ से मारे और हांके जाते हैं, और इनके लिए मुसलसल अज़ाब है। ताहम कोई इनमें से कुछ ले उड़े तो एक तेज शोला इनका पीछा करता है। सितारों के तीन मकासद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, जिसमें से दो इस एक ही आयत में है, खूबसूरती और शयातीन को पीछे भगाना। इससे क्या पता चलता है कि जीनत हो लेकिन नुमाइश ना हो। जब नुमाइशी जीनत हो और मकसद ना हो तो जिंदगी बोझल हो जाती है। मसलन आपके इस्तेमाल की चीजें हैं घर में, पर्दे लगे, उसकी जरूरत है ना, तो उस पर्दे का अगर डिजाइन रंग खूबसूरत हो और उस पर अगर कोई थोड़ा बहुत चल गया, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि पर्दा आपको एक काम भी दे रहा है। लेकिन सिर्फ कोई एक ऐसी चीज लाके घर में रख देनी जो सिर्फ जीना, तो ये पसंदीदा नहीं है। जब हमारा माल कसरत से डेकोरेशन और ऐसी सजावट की चीजों पे लगने लगता है, तो याद रखिए मकसद से गाफिल होते हैं। कल तक तो जीनत और सजावट घरों की थी, पर्दे, कुर्सियां, मेज, फर्नीचर, ये तो बचपन से सुना। आज का एक इशू क्या है? खाना पकता है 10 यूरो में और उसको सजाते हैं 20 यूरो में। केक कितने का बनता है? 2-4 यूरो का आटा मैदा ले आइए, चीनी डालने 5 यूरो लगते होंगे, और उसकी जो आइसिंग और उसकी टॉपिंग और उसकी तस्वीरें, क्या क्या दुनिया में काम शुरू हो गए डेकोरेशन के नाम पे। ये बेमकसद कौमों की अलामत है। कभी बैठ के सोचे, देखिए ये नहीं अल्लाह कह रहा बेडंगा करें, खाना पकाते हैं ना अच्छा रखें, खाने का रंग अच्छा हो, जायका अच्छा हो, सुर्ख सालन है, ऊपर सब्ज धनिया डाल दीजिए, सफेद डोंगे में डाल दीजिए, ऊपर हल्का सा मसाला डाल दें, हर्ज की बात कोई नहीं है। लेकिन मकसद ये बन जाए कि डेकोरेशन पे वक्त भी ज्यादा, मेहनत भी ज्यादा। बास सिस्टर्स को इतना क्रेव हो जाता है और वो अपनी तारीफ सिर्फ करवाने के लिए दोस्तों के नाम पे 10-10 खाने बनाती हैं, और एक एक खाने के ऊपर जो वक्त और एफर्ट, और एक एक चीज के लिए एक एक पुर्जा ढूंढेंगे, ये इसके लिए, फिर ये मटेरियल चाहिए, एक एक दुकान से चाहिए, एक उससे। ये दावत आपने की कि अपनी जर पे मुसीबत डाल दी। और अक्सर देखिए जो सजावट की चीजें होती हैं, लोग उतार के साइड पे कर देते हैं। बामकसद जीनत कीजिए, जो पहनना है, जो ओढ़ना है, जो खाना है, जो पीना है, अच्छा कीजिए। लेकिन सिर्फ सजावट का एक शोपीस बनकर अपने आप को पेश करना, ये डिस्प्ले कल्चर आप में सितारों की इस मिसाल से समझ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। پھر فرمایا بن سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہے؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا، تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے مذاق میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے، بھلا کہیں ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں، اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے ابا اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو۔ ذرا سا انداز تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے یہ بات بتائی کہ تم مذاق کرتے ہو۔ دین کی بات بتانے والے کا مذاق کرنا، یہ اپنی آفت کو پکارتا ہے۔ وہ تو بے بس ہو سکتا ہے نوح کی طرح، لیکن اس کا رب بے بس نہیں ہوتا، پھر وہ ایسی پکڑ کرتا ہے کہ جس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیے کہ جب لوگ اپنے باپ دادا کے نام پہ سٹبن ہو کر حق کا انکار کریں تو یہ تو سب سے بدتر قسم کی بات ہے، کریں کیا؟ ایسے لوگوں کو انذار کریں جو بھی اپنا مذاق اڑایا جانا برداشت کر لے اور اپنے کام سے پہ لگا رہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے۔ پھر قیامت کی بات، بس ایک چھڑکی ہوگی اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر یہاں آ جائیے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، الان۔ قیامت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے۔ اگر آپ نے میں نے آج کے اس وقت کا فائدہ نہ اٹھایا تو یاد رکھیے نقصان کیا ہوگا۔ قیامت کے دن کھڑے آپ ذرا اس جملے کی تلہی تو محسوس کیجئے، ہائے ہماری کمبختی، جیسے انگلش میں لوگ کہتے ہیں ہاؤ بیڈ لک وی آر، حالانکہ یہ کہنا بھی نہیں چاہیے، ہم بڑے بدبخت ہیں، ہم نے تو اس کی تیاری نہیں کی۔ حکم ہوگا گھیر لو سب ظالم اور ان کے ساتھی اور ان معبودوں کو جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ کوئسچنز ہوں گے، کوئی گزرتا جائے تو گزرتا جائے، اور اگر وہاں امیگریشن پہ روک لیا جائے رکیں ذرا ادھر آپ سے کچھ پوچھنا ہے، تو ہاتھوں کے طوطے چڑیاں سب اڑ جاتے ہیں۔ قیامت کے دن کیا حال ہوگا جس کو روک لیا گیا کہ ذرا رکیے آپ کی ذرا چیکنگ ہوگی، کیا ہو گیا تمہیں، اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے، یعنی آج تو اتنی بھیگی بلیاں بن گئے کہ ایک دوسرے کے سامنے سرنڈر کریں، اس کے بعد ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ آپ نوٹ کریں 23rd پارے میں قیامت کی جھلکیاں، اور بالکل آنکھوں دیکھی سور کی باتیں، قیامت کے دن روکا جا رہا ہے، کرا جا رہا ہے۔ اب اس منظر کو ذرا سے شعور کے ساتھ پڑھیے کہ جب لوگ بن دیکھے دوسروں کو فالو کرتے ہیں، بن سوچے بغیر علم کے دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں، تو وہاں ان کا کیا حال ہوگا۔ فرمائے باہم تکرار شروع کر دیں گے، پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود سرکش لوگ تھے، آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ یہ جھگڑا، یہ لڑائی ذرا آنکھوں کے سامنے لا کر دیکھیے، ایسے نہیں لگ رہا کھلی جگہ اور دو فریق آپس میں لڑ رہے ہیں، دو فریق نہیں بلکہ دو گرہ اور باقی سب کھڑے ہوئے میچ دیکھ رہے ہیں ان کا لڑنے کا۔ قیامت کے دن جہنم کے عذابوں میں ایک عذاب جھگڑوں کا ہوگا، بالکل ایسی جیسے دنیا میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں نا، تو دنیا عذاب ہو جاتی ہے، وہ گھر جہنم بن جاتا ہے جہاں ہر وقت لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی ہوں۔ تو جہنم میں ایک تو گرمی، سفوکیشن، گھبراہٹ اور اوپر سے لڑائی۔ دنیا میں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس روز وہ سب اس عذاب میں مشترک ہوں گے، ہم مجرموں کے ساتھ یہی کیا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنو کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں شاعر مجنو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا بدلہ جو تم کرتے رہے۔ یہ بھی انداز بہت دکھ رہا ہے اس بارے میں، اعمال کا بدلہ، اعمال کا بدلہ۔ अल्लाह ताला ने हमारे सामने सब कुछ रखा है। देखिए, अकीदे के फर्क ने मंजिल जुदा कर दी। एक साथ दो लोग निकलते हैं, एक का रास्ता इधर चला जाता है, एक इधर। क्यों? कि आगे से तरजीहात फर्क है। एक को मस्जिद जाना है, वो राइट ले लेगा। एक को सिनेमा में जाना है, वो रॉन्ग लेफ्ट ले लेगा। जिंदगी में आप और मैं अपने लिए इस आयतों पे थोड़ा सा अमल का एक नुक्ता लेते हैं। पहली बात है, अपने अकीदे की फिक्र कीजिए। मेरा अकीदा ठीक है? अकीदा के तीन चीजों को जोड़ लें। अल्लाह सुबहान तआला की सिफात, उसकी खूबियां, नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स, अस्मा सिफात ठीक जानती हूँ? अल्लाह क्या है और अल्लाह क्या नहीं है ये जानती हूँ? पहली चीज आपने मैंने अपने लिए ये चेक करनी है। दूसरी चीज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम, आप क्या थे, क्या कर गए, आज उनके क्या हकूक हैं, क्या उनके ऊपर हमारा मामला होना चाहिए, इसको नोट करें। तीसरी चीज क्या होगी, यानी अल्लाह का मुकाम, रसूल का मुकाम, रसूल क्या थे क्या नहीं, और तीसरा, मरने के बाद हकीकत में क्या हो रहा है, कौन मेरी मदद करेगा, कौन नहीं करेगा, कहाँ सिफारिश होगी, कहाँ नहीं होगी, किधर ये होगा वो होगा। इन तीन चीजों की सबसे पहले तो अपनी फिक्र करें। और अगर आप इजाजत दें, आप में से लगता है कुछ लोगों को कि ये मेरे अंदर कमजोरी है, तो ये तीन मजमून पढ़ लें आप रमजान के बाद। इसके बगैर कोई अमल कबूल नहीं है। अब्दुल्ला बिन उबई ने अगर कुछ नेकियां की भी हुई थी, सब जाया हो गई, हालांकि खुद को मुसलमान कहता था। अबू लहब भी हाजियों को पानी पिलाता था, लेकिन एक जर्रा फायदा नहीं होगा क्योंकि कुफर पे था। तो अकीदा बड़ी बुनियाद है। अपनी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर सेकंड लेवल पे अपने घर वाले, बच्चे, शौहर, इनकी देखिए। इधर से उठिए तो अपने भाई बहन, एक एक नाम लेके देखें, और जहां मौका, आप ये कच्ची पक्की बहसें छेड़ के लड़ाई ना करें, क्योंकि जितनी लड़ाई झगड़ा हमारा अकीदे के मौजू पे होता है, उतना शायद किसी और पे नहीं होता। और चूंकि हमें खुद पूरा इल्म नहीं होता, दो बातें सुन के हम भी शक में पड़ जाते हैं। लेकिन फिर अपने भाई बहनों, फिर दोस्त अहबाब, साथी, और फिर अगर दर्द बढ़ता जाए तो अपने इर्द गिर्द हर बंदे के ये तीन मौजू दुरुस्त करा दीजिए। 13 साल की जंग इसी अकीदे की जंग थी। जितने मर्जी अमल सवाले कर लीजिए, एक अकीदे की खराबी गलत है। मैं आपको मिसाल दे देती हूँ सिर्फ समझाने के लिए। शौहर और बीवी का ताल्लुक निकाह की सूरत में बनता है। निकाह को अकद कहते हैं, अकदे मसनूना। यही अकद अकीदा में बदल जाता है जब अल्लाह के साथ आता है। एग्रीमेंट का नाम है। अब अकद लिखा, उसके बाद अब बीवी अच्छी है बुरी है, नाश्ता बना के देती है नहीं, कपड़े सुईती है धोती है नहीं, अच्छी है, ये तो बाद की बातें है ना। निकाह तो किसी से हो ना, तो ये सारे ही काम किसी मर्द के लिए करने लग जाए तो कोई बर्दाश्त करेगा? पहले ताल्लुक अल्लाह से, रसूल से, और आखरत के मामले में ठीक करें। यही बात आपको और मुझे यहां दिख रही है। अब दूसरी सूरत के लोग, कि जिन्होंने वाकई अपनी फिक्रें कर ली थी, अल्लाह ताला उनका जिक्र फरमाते हैं कि असल बात यह है कि ये वो लोग नहीं है कि जो अपने आप को हवाओं के हवाले में छोड़ देते थे, या बिल्कुल इन्होंने अपने आप को अलग किया हुआ था, बल्कि ये वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने दुनिया में मौका दिया और इन्होंने इस मौके से फायदा उठा लिया, अपनी इसलाह फरमा ली। दूसरे लोग, इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे इस इंजामे बद से महफूज होंगे। इनके लिए जाना बूझा रिस्क है, हर तरह की लजीज चीजें और नेमत भरी जन्नतें, जिनमें वो इज्जत के साथ रखे जाएंगे, तख्तों पर आमने सामने बैठेंगे। दिलों में चूंकि कीने और बुगज नहीं होंगे तो आमने सामने बैठेंगे। शराब के चश्मों से सागर भर कर इनके दरमियान फिराए जाएंगे। शराब क्या है? मशरूब। सीधी सी बात है, जहां जन्नत में लफ्ज शराब आए तो समझ लीजिए शराब कहते हैं अरब लोग पीने की चीज को। दुनिया की शराब जो रियल शराब है वो बुरी क्यों है? क्योंकि उससे नशा भी है और उससे बद तहजीब भी है। जन्नत में अल्लाह ने क्या क्या देना है, आप उसको शराब कहें, आप उसको मशरूब कहें, लेकिन उसमें वो कबाहत नहीं है जो कि दुनिया में होगी। शायद नाम शराब अल्लाह ने इसलिए इस्तेमाल किया कि जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के खौफ से छोड़ी, उनको वहां पीने को मिल जाए। इसीलिए फरमाया, ये चमकती हुई शराब जो पीने वालों के लिए लज्जत होगी। दुनिया की शराब अल्लाह ना चखाए, लेकिन सुना है कि बदजायका होती है। ना इनके जिस्म को इससे कोई जरर होगा, ना इनकी अकल इससे खराब होगी। दुनिया की शराब फेफड़ों को गला देती और अक्लों को खराब कर देती। और इनके पास निगाहें बचाने वाली खूबसूरत आंखों वाली औरतें होंगी। ऐसी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली, दुनिया की शराब पीकर किसी तवायफ के पहलू में बैठने वाला, वो क्या जाने कि वो क्या लज्जत होगी जब अल्लाह जन्नत में मनपसंद चीजों को अता करके ऐसी खूबसूरत महफिलें दे देगा। आप देखिए कि सिर्फ हलाल और हराम का फर्क है, चॉइस का फर्क है। अगर दुनिया में किसी की इन चीजों में कशिश है ना, तो उसको आखिरत में बदल दें, फिर देखिए कितनी तब्दीली आती है। अब एक मंजर आंखों में लाइएगा, इमेजिनेशन में लाएं, एक कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, स्काइप की वीडियो कॉल, आज के दौर में तो इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। जन्नत वाले ऊपर जन्नत में हैं, जहन्नुम वाले नीचे हैं, इमेजिन करें कितने फासले हैं। अब इन दोनों में हालात देखिएगा, अल्लाह कहाँ वहां से सेटेलाइट के जरिए जन्नत में बैठे हुए शख्स को जहन्नुम का एक शख्स दिखाने लगे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर हालात पूछेंगे, इनमें से एक कहेगा, दुनिया में मेरे एक हमनशीन था, हमनशीन किसको कहते हैं, कुली, साथ बैठने वाला, वो मुझसे कहा करता था, क्या तुम भी तस्दीक करने वालों में से हो, क्या वाकई जब हम मर चुके होंगे और मट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजर बन जाएंगे तो हमें जजा सजा दी जाएगी, यानी आखिरत का मुनकर था, डाउट्स पैदा करता था। अब क्या आप लोग देखना चाहते हैं कि वो साहेब अब कहाँ है, ऑफर की जाएगी, क्या आप इस बेईमान शख्स का हाल और अंजाम देखना चाहते हैं। ये कहकर जो ही वो झुकेगा, यानी ऊपर बैठा शख्स नीचे देखेगा, तो जहन्नुम की गहराई में उसको देख लेगा। क्या ये बात सच नहीं, कुरान की आयत है, तर्जमा पढ़ लीजिए, मैंने तो कोई एक लफ्ज नहीं बोला इसमें, और कुरान पे हम सब मुसलमानों का ईमान है, तो फिर ये होगा ना, है ना जहन्नुम, है जन्नत, और बुरे काम करने वाले मुशरिक और काफिर जाएंगे जहन्नुम में। आपको मुझे उनका दिफा करने की क्या जरूरत है, करना है तो उन तक दीन पहुंचा दीजिए, बदलना है तो लोगों का अकीदा बदल दीजिए, कोशिश तो कर लीजिए, अदरवाइज इस पे कोई ना बोले कि ये होगा कि नहीं होगा। खैर, अब जहन्नुम में उसको देखा और इससे खिताब करके कहेगा, आप कहते हैं हाय कैसे करेगा इतनी ऊपर से नीचे, तो आप पाकिस्तान कैसे बात करते हैं, अमेरिका की कॉल कैसे मिलती है, और ऑस्ट्रेलिया कैसे बात करते हैं, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया जाएं तो 48 घंटे के करीब लग जाता है, और फोन कॉल में लाएं तो 48 सेकंड में कनेक्ट हो जाती है, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। ये बातें उनको मुश्किल लगी होंगी जिन्होंने उस वक्त ये सुनी थी, जब यहां से वहां तक तो आवाज जाती थी, बाहर तक भी नहीं जाती थी। आज के मुसलमान को तो साइंस ने बहुत सारा दीन सिखा दिया, और आखिरत के बहुत सारे मराहल आप आज साइंसी तहकीकात के बाद जो चीजें सामने आई उसकी रोशनी में भी देख सकते हैं। अब दोनों की कॉल मिल रही है, सवाल जवाब देखिएगा। खुदा की कसम, तू तो मुझे तबाह ही कर देने वाला था, मेरे रब का फजल शामिल हाल ना होता तो आज मैं भी इन लोगों में से होता जो पकड़े हुए आए हैं। अच्छा तो क्या अब हम मरने वाले नहीं हैं, मौत जो हमें आनी थी वो बस पहले आ चुकी, अब हमें कोई अजाब नहीं होना। इसमें से हाईलाइट कीजिए और वाकई दिल की गहराई से अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर कभी आपकी जिंदगी में ऐसा कोई मामला आया था, और वो क्या था, قالت الله إن كدت لتردين, मुहासबा करते हैं, मेरी भी कोई ऐसी दोस्त है जो मुझे कुरान से दूर करती है, मेरा भी कोई ऐसा साथी है जो मेरे अकीदे को बिगाड़ने की कोशिश करता है, मेरा भी कोई ऐसा रिश्तेदार है जो मेरे अच्छे खासे अकीदे की ऊपर खच्चे उड़ा देता है, तो आज फिक्र कर लें। इससे क्या पता चला कि अल्लाह सुबहान तआला ने ये बता दिया कि दोस्तियां सोच के करो, अलमरु अला दीनी हलीली ही, आदमी अपने दोस्त के दीन पे, रिश्ते जोड़ो तो सोच के जोड़ो। पीछे पढ़ लिया आपने सूरत बकरा के ही शुरू में कि मुशरिक मर्द मुशरिक औरत से निकाह नहीं करता, आखिर ये सब कुछ क्यों कहा अल्लाह ने, इसलिए कहा कि अपने अकीदों की फिक्र करो। हजरत उमर फारूक ने अपने दौर में किताबी औरत से निकाह पर भी पाबंदी लगा दी थी, हालांकि एक खास हद तक जायज है, हम पढ़ के आए पीछे आयतों में, कहते थे क्यों, जब ये अहले किताब औरत से शादी करते हैं तो अपनी मुसलमान औरतों से कौन करेगा, एक बात, और दूसरा कहते थे कि ये औरतें अपने साथ बेहयाई लेकर आती हैं, इनको लिबास हिजाब के ज्यादा तरीके नहीं आते, तो इनके साथ जब हमारे मर्द शादियां करेंगे तो होगा, और कहते थे ये औरतें जब हमामों में जाकर गुसल करेंगी, यानी इज्तमाही जगह होती थी उस दौर में जहां औरतें एक जगह पे जाती थी एक में मर्द, इस तरह हमारे घरों वाले हिसाब तो नहीं थे, तो कहते थे जब ये किताबियां औरतें जाकर हमामों में यानी स्विमिंग पूल्स में या वॉशरूम्स में जाकर गुसल करेंगी तो हमारी मुसलमान औरतों की हया खत्म करेंगी। इस बात पे उस दौर में उमर ने और उमर लगा सकते थे, हुक्मरान अपने दौर में कोई भी पाबंदी लगा दे। आज का क्या हाल है? चंद सेकंड सोचिए, क्या मैं दूसरों से ताल्लुक जोड़ते वक्त इस चीज को अहमियत देती हूँ? और देखिए, जब बात सारी चीजों दोस्तियों में रिश्ते की आई है, तो फिर चंद कड़वे जुमले सुन लीजिए। हम सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग रिश्ते करते हुए होते हैं। ये चला गया तो अब अगला तो आना ही नहीं रिश्ता बेटी का, पकड़ लो। नमाजी नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा शिर्क है कोई बात नहीं, अकीदा खराब है कोई बात नहीं, गाड़ी तो है, कोठी तो है, बंगला तो है। और एक जुमला लिख लें, हम खुलते ही उस वक्त जब हम रिश्ते करते हैं। और मैं एक जुमला पीछे बोला ही हूँ, आपको शायद नहीं याद होगा, मुझे फिर याद आ रहा है। असल में मैं क्या हूँ? जैसे इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, मैं कुरान पढ़ा रही हूँ, जो मेरे साथ घर में रहेंगे वो मेरे मामला देख लेंगे, लेकिन मैं असल में क्या हूँ? जो मेरे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हमारे अंदर का अक्स होते हैं। बच्चों की अच्छी फिक्र, बच्चों का अच्छा किरदार, उनकी तरबियत आपके अंदर से अच्छा होने की दलील है, क्योंकि इंसान की फितरत में है कि वो अपनी औलाद को अपने से अच्छा देखना चाहता है। तो आप अपने अंदर को कमी देखते हैं, बच्चों में बुरी कर देते हैं। आपने कुरान नहीं सीखा, बच्चों को कुरान सिखाते हैं। आपकी बचपन में बहुत कमियां थी, सिखाई। आपकी औलाद असल में आपका परतो है। और अगर आप और मैं अपने बच्चों की दुनिया दुनिया दुनिया, तालीम तालीम तालीम, जॉब जॉब जॉब, घर बंगला कोठी है, तो मानिए सॉरी टू से, फिर हम वो हैं। वरना हम कभी बच्चों के नाम पे मजबूर ना हो। देखिए, मैंने लोगों को सबसे ज्यादा मजबूर होते देखा है तो बच्चों के नाम पे होते देखा है। बच्चा बच्चा बच्चा, बच्चे की शादी, बच्चे की खुशी, बच्चों के ससुराल की परेशानियां, फिर बहू की परेशानी, फिर बेटे की दामाद से डरते हैं, सबसे डरते हैं। लेकिन वमाली अलाबुदुल्लजी फतरोनी, अल्लाह ऐसी अगर औलाद दे जो ऐसी बात करने की दावत दे, या उसकी खुशी के लिए कुछ करना पड़े, अल्लाह की कसम मौका बन जाए तो जाके मुंह पे कह दे वमाली अलाबुदुल्लजी फतरोनी, अकेले जाओ शादी करके आ जाओ, मैं नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह को नाराज नहीं कर सकती, क्योंकि आबदुल लजी फतर नहीं, उसने जिसने पैदा किया उसका हक। हम सबसे ज्यादा अल्लाह का हक भूलते ही तब है जब हमारे सामने ऐसी कोई मुसीबत आ जाती है, और फिर खुद मजबूर होते हैं। किसने कहा आपको मजबूर होने को? फिर कहते हैं बच्चों पे जोर नहीं चलता। तो बच्चों को किसने बिगाड़ा? उनको किसने अकीदे का फर्क ना बताया? और अब ये चीज इतनी कसरत से सुनने में आ रही है कि चले इस्लाम और मुसलमान और नमाजी और गैर नमाजी और एक किस्म का दूसरा, उसको तो अब छोड़ दीजिए। अब इस दौर का जो मसला बन गया है वो क्या बन गया कि काफिरों के साथ हमारे बच्चों की शादियां हो रही हैं। अहले किताब का लफ्ज नहीं काफिर बोला मैंने, शऊर ही नहीं। वो कहते कुछ नहीं होता, आई लाइक हर, शी इज गुड, नो प्रॉब्लम, वो ऐसी नहीं वैसा नहीं। ऐसे लोग हैं? एक सिस्टर थी तो वो एक ऐसे लड़के से शादी करना चाह रही थी जो खुद को शिया कहता था, या कोई उसका अपना नाम था, कोई भी नाम होगा, अब ना मुझे उनका पता ना उनका पता। और कहती नहीं, वो बहुत अच्छा है, वो प्रैक्टिसिंग नहीं है, वो ऐसा नहीं, और वो खुद दूसरी सोच पे थी। यकीन करे शायद 8 दिन शादी नहीं निभी। शादी से पहले वो और रूप होता है, वो लवर होता है, शादी के बाद वो हस्बैंड होता है, फिर वो बर्दाश्त करता है, या फिर दीन टूटता है या कुछ। तो ये मिसाल जो आपके मेरे सामने है कि वो दोस्त जहन्नुम में पड़ा और वो आप वहां बैठ के जन्नत में करे, अल्लाह तेरा शुक्र है मैं इसकी बातों में नहीं आ गई। किस किस की बातों में आते हैं? अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। अब आगे जहन्नुम का एक मंजर, अल्लाह ताला आप सबको हमें उस बुरे अंजाम से बचाए और हमारे प्यारों को भी बचाए। मिसाल दी, फरमाया अगर तुम बच गए हो, यानी तुमने अल्लाह की बात मान ली है और अपनी गलत चीजों को छोड़ दिया है, फरमाए नहाज लहुल फौजुल अजीम, यकीनन यही अजीम शान कामयाबी है। ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। कौन सी है ये? बुरी दोस्तियों को छोड़ के जन्नत में पहुंच गए। बोलो ये जियाफत अच्छी है या जक्कूम का दरख्त? हमने इस दरख्त को जालिमों के लिए फितना बना दिया है। वो एक दरख्त है जो जहन्नुम की तह से निकलता है, इसके शगुफे ऐसे हैं जैसे शैतानों के सर। जहन्नुम के लोग इसे खाएंगे और इसी से पेट भरेंगे, फिर इस पर पीने के लिए इनको खौलता हुआ पानी मिलेगा। इसके बाद इनकी वापसी इसी आतिशे दोजख की तरफ होगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया और इन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ चले। हालांकि इनसे पहले बहुत से लोग गुमराह हो चुके थे और इनमें से हमने मुतनब्बिह करने वाले रसूल भेजे थे। अब देख लो कि उन तनबीह किए जाने वालों का क्या अंजाम हुआ। इस बद अंजामी से बस अल्लाह के वही बंदे बचे हैं जिन्हें इसने अपने लिए खालिस कर दिया। अल्लाह हमें अपने लिए खालिस कर दे। आप देखिए कि मछली का एक कांटा भी गले में फंस जाए खाना खाने के दौरान, क्या हाल होता है? आंखें उबल आती हैं भाई, गोता लग जाए, उछू लग जाए, गले में कतरा एक खाने का गुजर जाए सांस की नाली की तरफ, देखिए क्या हाल है, क्या बनेगा जब इस वक्त वहां वो ये कड़वे खाने खाने पड़ेंगे, थोर और जरी, इस तरह के खाने हैं जानों के, जख्मों की धोवन, पसीना, बदबू वाली चीजें, तो कौन बचेगा? मुखलसीन बचेंगे, अल्लाह मुखलस बना दे। देखिए यहाँ भी ये सूरत में आप बार बार ये लफ्ज पढ़ रहे हैं, एक होता है लफ्ज मुखलस और एक होता है मुखलस, असल बात कौन है? मुखलस बनना है। मुखलिस कौन है? ग्रामर की रोशनी में देखे तो फाइल है, और फाइल कहते हैं काम करने वाले को। मुखलिस वो शख्स है जो इखलास हासिल करने पे स्टिल काम कर रहा है, ही इज वर्किंग ऑन इखलास के, आई वॉन्ट टू बी मुखलिस, यानी स्ट्रगलिंग दौर चल रहा है, बट मुखलस मुफअल मफूल का वजन है, सब्जेक्टिव है, ये कौन है? जो कर चुका। अल्लाह हमें मुखलस बना दे। कोशिश तो करनी पड़ेगी, धब्बे इतने आराम से थोड़ी उतरते हैं, पुराने धब्बों को तोड़ने में मेहनत करनी पड़ती है। अब आगे ऐसे ही मुखलसीन के किस्से आ रहे हैं, जिसमें पहला किस्सा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। वलकद नादान नूहुन फलनीम अलमुजीबून, हमको इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा था तो देखो हम कैसे अच्छे जवाब देने वाले थे, हमने उनको और उनके घर वालों को कर्बे अजीम से बचा लिया। ये कौन सा कर्बे अजीम है? फिर लिखिए, शिर्क वाले लोगों में रहना, क्योंकि वमा अली अला अब्दुल्लजी फतरनी, पूरे बारे में तौहीद छुपी हुई है, जब तक आप और मैं अल्लाह का हक नहीं पहचानेंगे हमें समझ कोई नहीं आएगी। तो एक ईमान वाला मुशरिक माहौल में तो खुश नहीं रह सकता, जहां शिर्क हो, जहां अल्लाह की नाफरमानी हो, जहां कानून टूटे, जहां अल्लाह के नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाया जाए, वो उसके लिए कर्बे अजीम है। ये अलग बात है, हम कहते हैं इट्स ओके, डोंट बी रिजिड, घर का माहौल भी तो खराब नहीं करना ना। हम रस्मों को नहीं छोड़ सकते थे, उन्होंने अपने प्यारों को छोड़ दिया, फरमाया और उसी की नस्ल को बाकी रखा, और बाद की नस्लों में इनकी तारीफ और तौसीफ छोड़ दी। सलाम है नूह पर तमाम दुनिया वालों में, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा दिया करते हैं, दर हकीकत वो हमारे मोमिन बंदों में से था, फिर दूसरे गिरोह को हमने गर्क कर दिया। क्या पता चला कि नूह को 950 साल की तबलीग के बाद अल्लाह ने इतना क्रेडिट दिया, आज जो इस रास्ते पे अगर 4 दिन भी चलता है अल्लाह उसको भी देने को तैयार है। मत सोचे कि उनकी तारीफ और तौसीफ है, आज के दौर के आप मुखलस बन जाए, आप दुनिया में इस किताब का नाम तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन अल्लाह अपने पास फरिश्तों में लिख देगा, फरिश्तों वो मेरी बंदी है, कुरान पढ़ के मुखलस बन गई, उसकी तरजीहात सेट हो गई। और तरजीहात का सेट होना क्या है कि वमा अली अला अब्दुल्लजी फतरनी, आज अपने दिल को इस पर जमा के उठिएगा, यहां से मैंने अल्लाह के लिए किसी को नाराज नहीं करना, मैं क्यों करूं? देखिए ना आप लफ्ज देखे ना, वमा लिया मुझे क्या हुआ, यानी अगर बड़ा इसका ठेठ तर्जमा करूं ना, वमा लिया मुझे क्या हो गया, यानी मैं तुमसे क्यों डरूं, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं तो उसकी मानूं कि अल्लाह जीफा तो नहीं वही ले ही तुर जाऊं, जिसको जवाब देना है उसके सामने जाऊं, तुमसे मैं क्यों डरूं, बस ये टोन आ गई तो मुखलस हो जाएंगे। सबसे बड़ी रुकावट हमारे और मुखलस होने के बीच में ये मसले हैं जो हम लोगों को नो नहीं कह पाते, और भीगी बिलियां बनकर मुजरिम बनकर अपनी खुशियों के मौकों पर जाते हैं, क्या करें फिर नाराज होंगे और धमकियां मिलेंगे और बच्चा नाराज होगा, इतने फुट फुट के बच्चे से लोग डरते हैं, जवान है आपसे बच्चा, उसको थप्पड़ मारें, अगर मैं नहीं कहती मारें जाके, लेकिन अगर मैं आपको समझा रही हूं कि अगर आप मुखलस हैं तो आपका बच्चा कभी आपको गलत चीज पे नहीं माइल करेगा, ये तो बड़ी ना जहालत की बात है कि हम अपने प्यारों को खुश करने के लिए चुप कर जाओ, बस अल्लाह को नाराज करके आती हूँ। और आज तो अल्लाह रहम करे हमारा तो कल्चर ये बन गया कि वो जैसे कहते हैं ना, आज नहीं करोगे तो कब करोगे, वो मैंने एक किसी जगह एक क्लिप देखा, तो बेटा और बाप आपस में बातें कर रहा था, तो जो यही कह रहा था, अब्बा शादी के मौके पर ये नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और इस मौके पे ये नहीं लेना तो कब लेना, जैसे हमारे यहाँ इस मौके पे हर चीज एक्सट्रीम पे चाहते हैं ना अच्छी हो, तो उसने कहा मुझे तो ये लग रहा है कि तू ये कह रहा है कि खुशी के मौके पे अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे तो और कब करेंगे। वमा अली अला अब्दुल्लजी फतरनी, अल्लाह हमारा दिल खोल दे, अल्लाह हमें मुखलस बना दे, ये बार बार हर पारे में ये नबियों के किस्से क्यों आते हैं और सलामुन अल मुरसलीन की बातें क्यों आती हैं, क्यों ये दुनिया में मुखलस बन के गए। देखिए हजरत नूह की किसी नमाज रोजे का जिक्र आपने नहीं पढ़ा, पर ये मुखलस थे, ये अपने वक्त में एक चट्टान बन के खड़े हो गए थे गलत चीजों के आगे, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वजह क्या थी कि वो अल्लाह के आगे किसी को नहीं कुछ समझते थे, और यही असल बात है।